ठाकुर साहब ने गलती की और उनकी बेटी ने उस गलती को सुधार दिया, तो क्या अब मेरे प्रति आपकी नफ़रत कुछ कम हुई? क्या अब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं? जो हुआ उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, और मैं कह चुकी हूँ कि आपके और ठाकुर साहब के बीच नहीं आऊँगी। क्या अब आप हमारे रिश्ते और मुझे एक मौका दे सकते हैं? शान को आरवी से इस सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए पहले तो वो हैरान हुआ, फिर अपना अतीत याद करते हुए उसके चेहरे पर कड़वाहट उतर आई। उसने नफ़रत भरी निगाहों से उसको घूरते हुए कहा, नहीं, मेरे पास तुम्हारे और इस रिश्ते के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है। तुम गलती ठीक करने की बात कर रही हो, पर तुम्हारे डैड ने गलतियाँ नहीं की हैं, गुनाह किए हैं, वो भी ऐसे जिनकी कोई माफ़ी ही नहीं। तुमने डैड को तो ठीक कर दिया, पर क्या मेरी माँ और उनका प्यार मुझे वापस लौटा सकती हो तुम? तुम्हारे डैड ने हमारा हँसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, क्या वही परिवार वापस लौटा सकती हो तुम? मुझसे मेरा बचपन छिन गया, क्या लौटा सकती हो उसे? मेरे डैड ने इतना वक्त व्हीलचेयर पर बिताया और आज भी माँ की कमी खलती है उन्हें। बोलो, क्या कर सकती हो सब ठीक? जो दर्द मैंने और डैड ने सहा इतने सालों, क्या उसे मिटा सकती हो तुम? नहीं, नहीं कर सकती। तुम क्या, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बीता वक्त कभी लौट कर नहीं आता। शान ने आरवी को देखा, जो चुप सी खड़ी उसकी बात सुन रही थी। अब उसने हल्के गुस्से से कहा, तुम कह रही हो कि तुमने डैड को ठीक कर दिया, तो तुमसे मेरे नफ़रत कम हो जाएगी और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। तुम में सादिया ठाकुर, आप कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे मन से ये नफ़रत उस दिन मिटेगी जिस दिन तुम्हारे बाप से मैं अपना बदला ले लूँगा, और उसके बाद तुम भी दोबारा इस घर और मेरी ज़िंदगी में नज़र नहीं आओगी, और वो दिन बहुत जल्द आएगा, क्योंकि बदले की शुरुआत आज से हो चुकी है। शान की बात सुनकर आरवी के चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। उसके सवाल को समझते हुए शान अब कुटिलता से मुस्कुराया। आज तुमने मुझे एक सरप्राइज़ दिया, तो बदले में मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। शायद वो सरप्राइज़ तुम्हें कुछ खास पसंद ना आए, पर मैं उस सरप्राइज़ को तुम्हें देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो तुम ज़रा अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि अभी हम कहीं जाने वाले हैं, जहाँ तुम मिसेज़ आरवी शांतनु मल्होत्रा के तौर पर जाओगी। तो ज़रा मेरे स्टेटस का ख्याल रखना। चलो, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं भी नहा लेता हूँ। शान ने अपनी बात पूरी की और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आरवी परेशान सी उसको देखती रही और उसकी उलझी हुई बातों को समझने की नाकाम सी कोशिश करती रही। शान के भाव बता रहे थे कि कुछ तो बड़ा चल रहा है उसके मन में, पर क्या, ये आरवी नहीं समझ सकी। उसने सर झटका और रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद शान सूट बूट पहने एकदम तैयार होकर नीचे पहुंचा और सबके बीच बैठ गया। सबने साथ में हलवा खाकर मुँह मीठा किया। फिर शान ने आरवी को देखकर नाराजगी से कहा, तुम अब भी तैयार नहीं हुई? कहा था ना मैंने, हमें कहीं ज़रूरी काम से जाना है। चलो जाओ, जल्दी से अच्छे से रेडी होकर आ जाओ। आरवी खामोशी से शान को देखने लगी, वहीं बाकी सबकी नज़रें भी उस पर टिक गईं। और किसी ने तो कुछ नहीं कहा, पर सुभाष ने आरवी के चेहरे के भावों को देखते हुए शान से कहा, शान, आप आरवी को कहाँ लेकर जाने की बात कर रहे हैं? शान, जिसकी नज़रें आरवी पर टिकी थीं, उसने सर घुमाकर सुभाष जी को देखा और मुस्कुराकर बोला, एक सरप्राइज़ है उसके लिए, अभी नहीं बता सकता, जब वो वापस आए तो खुद पूछ लीजिएगा। इतना कहकर उसने आरवी को फिर से रेडी होने को कहा, तो वो मन मारकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद जैसे रिहर्सल के लिए जाती थी सिंपल, वैसे ही तैयार होकर आ गई, जिस पर पहले तो शान ने उसको घूर कर देखा, फिर उसका हाथ थामकर बाहर की तरफ बढ़ गया। सारे रास्ते आरवी कभी शान को तो कभी बाहर देखती रही, और शान सामने देखते हुए ड्राइव करता रहा। करीब घंटे बाद कार एक बड़े से गेट को पार करते हुए अंदर की बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। आरवी ने जब उस बिल्डिंग पर लिखा बोर्ड पढ़ा, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने पलटकर शान को देखा, तो उसकी हैरानी की वजह समझते हुए शान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बाप का ऑफिस है, पर बस कुछ वक्त के लिए। वो कार से बाहर निकल गया और एक बार फिर उसकी उलझी हुई बातों में आरवी उलझ कर रह गई, पर उसकी बात का मतलब न समझ सकी। आरवी अब भी परेशान सी बैठी हुई थी, तभी उसके तरफ का गेट खुला और साथ ही शान की आवाज़ कानों में पड़ी, कम ऑन मिसेज मल्होत्रा, आज मैं आपको आपके भाई और बाप से मिलवाने लाया हूँ, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाइए, चलो जल्दी से बाहर आओ, अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरवी भावहीन सी शान को देखने लगी, जिसकी मुस्कान कुछ बहुत गलत होने का संकेत दे रही थी। उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो शान ने जबरदस्ती उसका हाथ थाम लिया और उसको बाहर निकालकर अंदर की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ ठाकुर अंपायर में तहलका मचा हुआ था, पूरा स्टाफ परेशान था, किसी की कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब कैसे हो गया। सुबह नहीं बल्कि आधी रात से अर्जुन और अमरजीत जी के पास फोन पर फोन आ रहे थे और वो जवाब देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि ये सब कैसे हुआ ये शायद अब तक वो खुद नहीं समझ पाए थे। हर जगह ये न्यूज़ आग की तरह फैल चुकी थी कि ठाकुर अंपायर डूबने की कगार पर है। जहां मार्केट में लगा उनका पैसा डूब गया था, वहीं शूट्स भी रुक चुके थे। उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू गिर चुकी थी, मार्केट से सभी शेयर बेचे जा चुके थे, और किसने भारी मात्रा में उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदे ये भी नहीं पता था उन्हें। इन्वेस्टर्स सर पर चढ़े थे कि उन्हें उनका पैसा वापस किया जाए, क्योंकि कंपनी के साथ वो अपना पैसा
पैसा नहीं डुबाना चाहते थे। इस वक्त अर्जुन अमरजीत जी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में थे और इन्वेस्टर्स भी वहां मौजूद थे। मीटिंग सुबह 7 बजे से चल रही थी। सबको यहां समझाने के लिए बुलाया गया था कि पैनिक न करें और साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। खैर अब होना क्या था ये कोई नहीं जानता था, पर सबको एक उम्मीद थी और उसी पर दुनिया कायम थी। 10 बजे जाकर मीटिंग खत्म हुई और एक के बाद एक सब इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स बाहर आने लगे। सबके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे। अब कॉन्फ्रेंस रूम में बस अर्जुन और अमरजीत जी ही बचे थे। अमरजीत जी परेशान से बैठे थे, वहीं अर्जुन ने अपना सर पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर उन्हें परेशान निगाहों से देखते हुए कहा, डैड हमारे स्टॉक्स के प्राइस उस फेक न्यूज की वजह से गिरे हैं और अब सारे स्टॉक किसी एक के नाम है, पर वो कौन है ये भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे में वो इंसान हमारी कंपनी को टेक ओवर कर सकता है। इससे हमारा मार्केट में लगाया सारा पैसा डूब गया। सारे क्रू मेंबर्स और एक्टर्स बीच में हमारा साथ छोड़कर चले गए। पैसे के साथ काम भी बंद पड़ गया। अब इन्वेस्टर्स प्रेशर बना रहे हैं, एकदम से सब हमारे अगेंस्ट चले गए और ये सब यूं ही नहीं हुआ होगा। कोई तो है इन सब के पीछे जो हमें बर्बाद करना चाहता है और आप उसका पता लगवाने की जगह इतने शांत बैठे हैं। अमरजीत जी शून्य में ताक रहे थे। अर्जुन की बात सुनने के बाद उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आप अब भी नहीं समझे कि ये सब किसने और क्यों किया है। अर्जुन ने चौंकते हुए उन्हें देखा और हैरानी से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं डैड, आप जानते हैं इन सब के पीछे कौन है? हम ही नहीं आप भी बखूबी जानते हैं कि कौन है जो किसी भी कीमत पर हमें बर्बाद करना चाहता है। अमरजीत जीतना कहकर चुप हो गए, पर उनके कहे ये चंद शब्द अर्जुन को किसी तरह इशारा कर रहे थे। वो कुछ पल खामोश सा उन्हें देखता रहा, फिर शक भरी नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, आप कहना चाहते हैं कि इन सबके पीछे शान है?
हम कुछ कहना नहीं चाहते, आपको बता रहे हैं कि इन सबके पीछे शान है और ये सब अचानक नहीं हुआ है। लंबी प्लानिंग चली है पर हमें भनक नहीं लगी और अब एक साथ इतना कुछ हो गया कि आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। शान ने बहुत ही सोच समझकर सब प्लान किया है और हमारे लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ना आप कुछ कर सकते हैं और ना ही हम। जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, जल्दी ही कंपनी को ताला लग जाएगा या इन्वेस्टर्स के पैसे वापस लौटाने के लिए हमें इस कंपनी को बेचना होगा, और सिर्फ कंपनी ही नहीं प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। आज शान अपने मकसद में कामयाब हो गया, बर्बाद कर दिया उन्होंने हमें, और शायद ये सजा है हमारे कर्मों की। जिंदगी में पहली बार आपने कुछ सही बात कही है ससुर जी। आज आपके और आपके परिवार के साथ जो भी हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है। अचानक ही वहां शान की आवाज गूंज उठी। अमरजीत जी और अर्जुन दोनों ने पहले हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर चौंकते हुए आवाज की दिशा में नजरें घुमाई तो शान उनसे कुछ कदमों की दूरी पर ही खड़ा था और उसके साथ आरवी भी थी जो उन्हीं दोनों को देख रही थी और कुछ परेशान भी लग रही थी। अर्जुन और अमरजीत जी अपनी बातों में इतने खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शान और आरवी अंदर आए। आरवी अमरजीत जी की कही सारी बात समझ गई थी और अब उसको कुछ कुछ समझ आने लगा था कि शान किस सरप्राइज की बात करके खुश हो रहा था और उसने क्यों कहा था कि बर्बादी आज से शुरू हो चुकी है। अर्जुन और अमरजीत जी दोनों हैरान परेशान से शान को देख रहे थे। वहीं शान दोनों को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर आरवी की तरफ सर घुमाते हुए बोला, चलो अपने डैड और भाई से मिल लो, क्या पता दोबारा ये मौका मिले ना मिले। आरवी ने हैरानी से उसको देखा, पर शान उसका हाथ थामे आगे बढ़ गया और अमरजीत जी के सामने आकर खड़े होकर कुटिल मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, ससुर जी आज आपके दामाद और बेटी बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में सफल हों। इतना कहकर वो नीचे झुका, पर आरवी अब भी खड़ी अमरजीत जी को देखती रही, जिससे शान को गुस्सा आ गया और उसने आरवी की हथेली को दबा दी। आशीर्वाद लो आरवी। दर्द से आरवी की सिसकी निकल गई, पर शान की बात मानने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि यहां उससे बहस करके उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती थी वो। दोनों ने अमरजीत जी के पैर छुए तो उन्होंने मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ रख दिया। महादेव आपको हर काम में सफलता दे, खूब तरक्की करें आप, और आपकी जिंदगी में सुख शांति समृद्धि का वास है। आपकी जोड़ी सदा यूं ही बनी रहे। टू बी कंटिन्यूड।